लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के शीर्षतम अधिकारी अंतोनियो गुटेरेस ने आगाह किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जरिए दुनिया की कायापलट कर देने वाले बदलाव आ रहे हैं, मगर इस टेक्नोलॉजी में निहित शक्ति चंद देशों और कंपनियों में ही केंद्रित है। उन्होंने मंगलवार 11 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में AI पर आयोजित एक शिखर बैठक में इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का लाभ सर्वजन तक पहुंचाने और विकसित व विकासशील देशों के बीच व्याप्त खाई को पाटे जाने की पुकार लगाई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में इस शिखर बैठक में अनेक देशों के नेता, टेक्नोलॉजी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सप्ताह फ्रांस की राजधानी पेरिस में AI पर आयोजित एक शिखर बैठक में इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने की पुकार लगाई। उन्होंने ध्यान दिलाया कि AI विज्ञान की फंतासी दुनिया से बाहर निकल करके दुनिया को बदल कर रख देने वाली शक्ति बन गई है। हम जिस तरह से काम करते हैं, रहते हैं और आपस में संपर्क व बातचीत करते हैं, साथ ही AI के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि क्षेत्र में भी विशाल प्रगति हुई है। मगर उन्होंने सचेत किया कि ये टेक्नोलॉजी हमारे साझा मूल्यों और अधिकारों की भी परीक्षा ले रही है। आज ये ताकत चंद हाथों में सीमित है, जिससे भू राजनैतिक दरारें गहरी हो रही हैं। कुछ कंपनियां और देश रिकॉर्ड निवेश के साथ तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जबकि विकासशील देश इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने वैश्विक स्तर पर एहतियाती उपायों पर सहमति बनाने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा किए जाने की अपील की।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा है कि पिछले साल बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए जिन सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दमन ने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था, उस क्रूरता के कारण केवल 46 दिनों में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें अधिकतम लोग सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे। UN मानवाधिकार कार्यालय ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित अपराधों की जांच में पाया है कि पूर्व सरकार की सुरक्षा और खुफिया सेवाओं और अवामी लीग पार्टी के सहयोगियों द्वारा दमन में हजारों लोग घायल हुए थे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने जिनीवा में कहा कि जांच रिपोर्ट में वर्णित कुछ सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जिसकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा ये मानवाधिकार उल्लंघन पूर्व राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी, समन्वय और निर्देश के साथ किए गए थे, जिसका एक विशिष्ट लक्ष्य विरोध प्रदर्शनों को दबाना और सत्ता पर पूर्व सरकार की पकड़ बनाए रखना था। मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार मारे गए लोगों में 12 से 13% बच्चे थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के जांच मिशन ने 16 सितंबर 2024 को एक टीम के साथ बांग्लादेश में काम करना शुरू किया था, जिसमें एक फॉरेंसिक चिकित्सक, एक हथियार विशेषज्ञ, एक लिंग विशेषज्ञ और एक विश्लेषक शामिल थे। जांचकर्ताओं ने विश्वविद्यालयों और अस्पतालों समेत विरोध स्थलों का दौरा भी किया। इस टीम ने अपनी जांच में 900 से अधिक गवाहों की गवाही को शामिल किया है।
गाजा पट्टी में जरूरतमंदों तक मानवीय राहत पहुंचाए जाने के प्रयास के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कर्मियों ने आगाह किया है कि 15 महीने तक जारी रही इसराइली बमबारी से विशाल स्तर पर आवश्यकताएं बरकरार हैं। यूएन मानवतावादी कार्यालय के अनुसार गाजा में उनकी सहायता टीमें जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के हर संभव प्रयासों में जुटी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार इसराइली बलों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट में 21 जनवरी को अपने आक्रमण शुरू करने के बाद जेनीन, तुलकरेम और तुबास प्रांतों और उन क्षेत्रों में स्थित 4 शरणार्थी शिविरों में कम से कम 44 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। मारे गए लोगों में से अनेक के पास कोई हथियार नहीं थे और उनसे कोई खतरा दरपेश नहीं था। मानवाधिकार कार्यालय ने फिलिस्तीनी लोगों की इन मौतों को पश्चिमी तट पर इसराइली बलों के अवैध प्रयोग के बढ़ते चलन का हिस्सा बताया, जहां युद्ध की स्थिति नहीं है। ओएससीएचआर ने इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में अभूतपूर्व पैमाने पर हो रहे विस्थापन पर भी प्रकाश डाला है, जितना दशकों में नहीं देखा गया। मानवाधिकार कार्यालय ने विस्थापित निवासियों के बयानों का हवाला दिया है, जिनमें बताया गया है कि इसराइली बलों ने हिंसा और ड्रोन हमलों की धमकी देकर उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया। उधर विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने शुक्रवार को बताया है कि उसने गाजा में 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद 8,60,000 से अधिक लोगों को भोजन पार्सल, तैयार भोजन, ब्रेड और नकदी की सहायता मुहैया कराई है। लाभान्वितों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। न्यूयॉर्क में यूएन प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने बताया कि WFP की लगभग 19,000 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री गाजा में पहुंची है। WHO ने भी शुक्रवार को गाजा के अस्पतालों में 1,00,000 लीटर ईंधन पहुंचाया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कर्मियों ने चेतावनी दी है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी हिस्से में M23 विद्रोही गुट और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकराव से विस्थापन संकट गहरा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भीषण दबाव है और सहायता मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। यूएन शरणार्थी एजेंसी की प्रवक्ता यूजिन ब्यून ने जिनेवा में शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि संकट बद से बदतर होता जा रहा है। आम नागरिक जान बचाने के लिए उन इलाकों में शरण ले रहे हैं जहां असुरक्षा के कारण मानवीय सहायता पहुंचाना संभव नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
रवांडा द्वारा समर्थित M23 नामक विद्रोही गुट ने पिछले महीने नॉर्थ कीवू प्रांत की राजधानी गोमा को अपने कब्जे में ले लिया था और अब उन्होंने साउथ कीवू की राजधानी बुकावू की ओर बढ़ना शुरू किया है। भारी गोलाबारी और लूटपाट के कारण दोनों प्रांतों में कम से कम 70,000 आपात आश्रय स्थल बर्बाद हो गए हैं। 3.5 लाख से अधिक लोगों के पास अपने सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। रिहायशी इलाकों में बिना विस्फोट हुई आयुध सामग्री बिखरी हुई है, जो कि आम नागरिकों के लिए घर लौटने में एक बड़ी बाधा है।
महिलाओं को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व गणित जैसे क्षेत्रों से जितना दूर रखा जाएगा, वैश्विक चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता उतनी ही अधिक सीमित हो जाएगी। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मंगलवार 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी अपने संदेश में यह बात कही। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने महिला वैज्ञानिकों की असाधारण प्रतिभा, सृजनात्मकता व दृढ़ता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, मगर वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 1/3 है। महिलाओं को पर्याप्त स्तर पर वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है, प्रकाशन अवसरों का अभाव है और विश्वविद्यालयों में नेतृत्व पदों पर उनकी मौजूदगी कम है। AI समेत नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के विकास के मौजूदा परिदृश्य में भी हर स्तर पर पुरुषों का दबदबा है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी से जुड़ी असमानताओं के कारण डिजिटल जगत में महिलाओं को पुरुषों के वर्चस्व का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी को समान अवसर मुहैया कराने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत पर जोर दिया।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार। वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है और वे बृहस्पतिवार को परम प्रसाद ग्रहण किए एवं कुछ काम भी किए। बृहस्पतिवार शाम को पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैटिकन प्रेस कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, संत पापा की नैदानिक स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है, उन्हें बुखार नहीं है और उनके रक्त संचार प्रक्रिया पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। आज सुबह वे पौत्र परम प्रसाद ग्रहण किए, फिर खुद को कार्य गतिविधियों के लिए समर्पित किए। पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस की शिकायत के बाद शुक्रवार 14 फरवरी को रोम के अगुस्तिनो जेमेली अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में उन्हें डबल निमोनिया होने का पता चला और उनकी औषधीय चिकित्सा में बदलाव किया गया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि पोप को फोकल निमोनिया है, जो फेफड़ों में संक्रमण के सीमित क्षेत्रों को दर्शाता है। उन्होंने बतलाया कि वे अपने आप सांस ले रहे हैं और उनका दिल स्थिर है। प्रतिदिन दो बार दी जाने वाले स्वास्थ्य अपडेट से पता चलता है कि पोप रात में अच्छी तरह से आराम करते हैं तथा सुबह नाश्ते के लिए बिस्तर से बाहर निकलते हैं। 21 से 23 फरवरी को महान जयंती समारोहों में से चौथे समारोह के रूप में स्थायी उपयाचकों के लिए जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। दुनिया भर के करीब 100 देशों के लगभग 6000 से अधिक तीर्थयात्री रोम पहुंच चुके हैं। रविवार को इस जयंती समारोह में पौत्र मिस्सा के दौरान 23 लोगों को उपयाचक का अभिषेक प्राप्त होगा। 23 फरवरी को संत पेट्रस महागिरजा घर में प्रातः 9 बजे यूखरिस्ट समारोह का अनुष्ठान पोप फ्रांसिस के प्रतिनिधि महामहिम कार्डिनल रिनो फिसिकेल्ला करेंगे, जो वैटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो प्रीफेक्ट हैं। 23 नए उपयाचकों में ब्राजील से 2, कोलंबिया से 6, फ्रांस से 1, इटली से 3, मेक्सिको से 3, पोलैंड से 2, स्पेन से 3 और अमेरिका से 3 हैं। शुक्रवार 21 फरवरी को रोम के 12 गिरजाघरों में तीर्थयात्रियों का स्वागत किया जाएगा। अपराह्न 3:30 बजे वे एक प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। उसके बाद 4 से 6 बजे उन्हें गिरजाघरों में धर्म शिक्षा होगी और इसकी विषय वस्तु होगी उपयाचकों की प्रेरिताई में आशा के ठोस संकेत। उपयाचक तीर्थयात्रा में भाग लेकर पौत्र द्वार में प्रवेश करेंगे और शनिवार को कोंचिलत्सियोने ऑडिटोरियम में प्रातः 9:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
एक अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह में भाग लेंगे। शनिवार को शाम 6 बजे संत पॉल सभागार में जागरण प्रार्थना होगी और रविवार को सुबह 9 बजे समारोही ख्रिस्तिया के साथ जयंती समारोह का समापन होगा। लेबनान की यात्रा के प्रथम दिन समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के कार्डिनल प्रीफेक्ट ने शांति के लिए नेतृत्व अकादमी में युवा ख्रिस्तियों के साथ मुलाकात की तथा प्राधिधा मदश बेकारा राय के साथ समय बिताए। लेबनान के लोग गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों युवा पलायन करने को मजबूर हैं। और हाल ही में हुए युद्ध ने दक्षिण क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जिससे राजधानी में भी नुकसान हुआ है, जिससे शरणार्थी संकट और भी बदतर हो गया है। अपने साथ मिलन निवासियों के साथ साथ लेबनान में 3.5 मिलियन शरणार्थी हैं। समग्र मानव विकास के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल चर्नी 19 से 23 फरवरी तक लेबनान की यात्रा पर हैं। उन्हें देश के धर्माध्यक्षों के बीच पोप का सामीप्य ले जाने तथा स्थानीय कलीसिया की पहल का समर्थन करने के लिए भेजा गया है। कार्डिनल जो बुधवार को रोम से रवाना हुए, उन्हें अपने मिशन में जेमिली अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस की लगातार याद आ रही है। उन्होंने पोप के स्वास्थ्य के लिए लेबनान की माता मरियम से प्रार्थना की। लेबनान की राजधानी पहुंचने पर रफीक हरीरी हवाई अड्डे पर प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष पाओलो बोर्गिया और त्रिपोली के मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष यूसुफ स्विफ्ट ने उनका स्वागत किया। कार्डिनल चर्नी ने कहा, आइए हम संत पापा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। महाधर्माध्यक्ष स्विफ्ट ने कहा, हमारे यहाँ हर 15 साल में युद्ध होता है। 1975 में गृह युद्ध के बाद से हम हमेशा युद्धों, संक्षिप्त विराम और फिर अधिक युद्धों के चक्र में रहे हैं। उन्होंने कहा, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच अंतिम संघर्ष ने पहले से कमजोर संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे दक्षिण से मध्य और उत्तरी लेबनान में शरणार्थियों की एक नई लहर आ गई है। उन्होंने किसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन उनका स्वागत किया गया है। कार्तिक कलीसिया ने अपनी स्वतंत्रता के कारण अपनी मजबूत और स्पष्ट आवाज के साथ खासकर प्रवासियों का स्वागत करने की कोशिश की है। युद्ध विराम की घोषणा की सुबह बहुत से लोग अपने घरों और गांवों में लौट आए हैं। वे अपने देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, महाधर्माध्यक्ष स्विफ्ट बतलाते हुए कहते हैं, यहाँ हम भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, भले ही ऐसा लगता हो कि कोई भविष्य नहीं है। वे लंबे समय तक चले आ रहे राजनीतिक विरोध के कारण नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के चुनाव के बारे में बोलते हुए राहत की सांस लेते हैं। अब हमें राष्ट्र और कलीसिया की स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का विश्वास हासिल करने की जरूरत है। जब कोई व्यवस्था अच्छी तरह से काम करती है तो लोग वहीं रहते हैं। हालांकि वर्तमान की वास्तविकता निराशाजनक प्रतीत होती है, महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कोई निवेश नहीं है और लोगों की बचत बैंकों से गायब हो गई है, पता नहीं कहां गायब हो गई है। संकट से पहले एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,500 लेबनानी लीरा थी, संकट के बाद यह 90,000 लीरा तक बढ़ गई है। धीरे धीरे व्यवसाय और स्थानीय उत्पादन फिर से शुरू हो रहे हैं और कई श्रमिक विशेषकर त्रिपोली में खेती में वापस आ गए हैं। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा, लेकिन लोग मुश्किल से महीने के अंत तक रह पाते हैं। कोई भी युवा शादी करने या घर खरीदने की योजना नहीं बना सकता। बेतलहम के लूथरन चर्च के पादरी ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि पश्चिमी तट इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वे कहते हैं, हम देखते हैं कि गजा में क्या हो रहा है और पूछते हैं, क्या हमारा हाल ऐसा होगा? 3 फिलिस्तीनी ख्रिस्ती कार्यकर्ता, मानवाधिकार वकील सहेर फ्रांसिस, सामाजिक और राजनीतिक प्रचारक रिफात कसिस और बेतलहम के लूथरन चर्च के पादरी मानने मुंथर इसाक ने बुधवार को वैटिकन का दौरा किया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।